अगर हमें वो इतनी एडवांटेज वाली नहीं लगेगी तो तुम भी हमारे दीन की बात मान लोगे। तो इन्होंने एक और प्रपोजल मेंशन किया जो इब्ने हिशाम सीरा में आपको और इब्ने जरीर में मिल जाता है। और इसी मौके पर, इस इब्ने जरीर की रिवायत के मुताबिक, इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरतुल काफिरून नाजिल फरमाई। तो इन रिवायात से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर कुरैश के लीडर्स ने मुख्तलिफ प्रपोजल्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने इतने सारे प्रपोजल्स आने के बाद, जो कि आपको ज्यादातर क्लासिकल स्कॉलर्स की राय मिलती है कि जब इतने प्रपोजल इन्होंने दिए, वेल्दी इंसान बना देंगे, निकाह करा देंगे, लीडर बना लेंगे, हम मिक्स एंड मैच कर लेंगे, 1 साल तुम्हारे खुदा की इबादत, 1 साल हमारे खुदा की इबादत, तुम थोड़ा सा हमारी बातें मान लो, थोड़ी हम तुम्हारी बातें मान लेंगे, जब इतने प्रपोजल दिए तो अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से सूरतुल काफिरून में डिसाइसिव रिप्लाई आ गया। डिसाइसिव सूरा दे दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आपको सूरतुल काफिरून शिर्क की नेगेशन में अता कर दी गई। और ये जितने प्रपोजल्स कुफार की तरफ से, कुरैश की तरफ से आ रहे थे, इससे दो चीजें आपको पता चलेंगी कि ये कौन से वाले कुफार थे जिनको अल्लाह ने दुश्मन कहा है रसूल अल्लाह का और इस्लाम का। दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हैं अब तक की शान नजूल पर। एक, कुरैश के लीडर्स को भी अंदाजा हो गया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक की स्ट्रेटजी से कि ये शख्स जिस तौहीद की तरफ बुला रहा है ये इससे रुकेगा नहीं, इसलिए हर थोड़ी देर के बाद एक नया कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आ जाते थे। दूसरी तरफ ये अपने अंदर भी बड़ा कन्विक्शन रखते थे कि हम अपने आबा का रास्ता छोड़ेंगे नहीं। तो इसी सूरत में इनको लगता था कि अब वाहिद हल ये है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया जाए, गिव एंड टेक कर लिया जाए, इसीलिए ये बार बार इन प्रपोजल्स के साथ आते थे। ये जो कुफार की तरफ से प्रपोजल्स का आना है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी था और ये हमेशा से था और ये हमेशा रहेगा कि कॉम्प्रोमाइज कराने की बातें जो हैं वो दीन पे अमल करते हुए दी जाती हैं। मेनली मेनली सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने के बाद नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जब भी दीन पर कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द शैतान, फ्रॉम द वसवसा ऑफ शैतान, बिकॉज वो इंसानों को सिर्फ एज अ व्हीकल इस्तेमाल करता है। सूरत कलम आयत नंबर 9, सूरत कलम आयत नंबर 9 क्या आता है उसमें? वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ये चाहते हैं कि थोड़ा तुम सॉफ्टन हो जाओ सो दैट दे कैन सॉफ्टन अ लिटिल बिट, ताकि सब खुश रह सकें। ये कंप्लीटली कंप्लीटली शैतान की ट्रिक है। कुफार हमेशा चाहेंगे कि मुसलमान कभी भी कंप्लीट इस्लाम को फॉलो ना करें। ये हमेशा चाहेंगे कि कुछ मानो कुछ मनाओ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेबल थिंग जो सूरतुल काफिरून के शाने नजूल में आ रही है और सूरतुल कलम की आयत नंबर 9 उसको सपोर्ट कर रही है, जिसका हमारी जिंदगियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एंड आई कांट मूव फॉरवर्ड विदाउट मेंशनिंग दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आर लाइव्स। जब ये कहा गया कि इनका तो काम है अल्लाह के रसूल से कि ये आपको गिव एंड टेक की बातें करेंगे, ये आपको ट्रिक करेंगे कि आप पूरे के पूरे जो हैं वो अल्लाह की इताअत ना करें, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, आप भी थोड़ा सॉफ्टन हो जाएं और ये भी थोड़ा सॉफ्टन हो जाएं, ये वो क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो सूरह बकरा में आयत नंबर 208 में क्लियरली ईमान लाने वालों से कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आप दरवाजे पे, आपके बाहर खुदा ना खास्ता रोड पर फायरिंग हो रही हो और आपका बच्चा मेन गेट खोल के और दरवाजे के दरमियान में लटकना शुरू कर दे और दरवाजा खोल कर खड़ा हो जाए कि मैं देखूं क्या हो रहा है, तो क्या होगा? वो खुद भी वल्नरेबल हो गया और उसने पूरे घर को जो है वो इस वक्त इनसिक्योर कर दिया। सो पूरे के पूरा अंदर आ जाए और दरवाजा बंद कर दे। दिस इज द फ्रेज, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु अदुवुम मुबीन। देखो, अगर तुमने पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का कदम नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है? तुम शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे और फिर क्या होगा? वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी اسلام میں مکمل داخل نہ ہونا اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے قرین کو مضبوط کرنے کا ریزن بنتا ہے. شیطان کمپرومائز کراتا ہے. اینڈ اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، جنرلی قرآن پڑھنے والی خواتین، بیکاز میری آڈینس خواتین ہے تو میں خواتین سے بات کر رہی ہوں، اگر یہ بیماری مردوں میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بٹ ڈیفینیٹلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرو، یہ کچھ مانو اور کچھ مناؤ، یہ کانسیپٹ اسلام نہیں دیتا ہے. رسول اللہ کو بھی کفار کے مقابلے میں یہی حکم دیا گیا تھا. تو ہم آج خاص طور پر آج کے مسلمان جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں آج بہت کم سمجھ رہے ہیں. And this is a very important point which I would really like to just bring it here. اس لیے کہ there is no doubt کہ مسلمان کفار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، مسلمان کفار کے ساتھ اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. بٹ تھنک فرام ا انڈیویجول پرسپیکٹو، قرآن ہم میں سے ہر ایک سے بات کر رہا ہے. آپ کہیں میں کون سے کسی ملک کی پریزیڈنٹ لگی ہوئی ہوں جو مجھے کفار سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھیجتے ہوئے کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ تو پالیٹیشنس کا کام ہے، یہ تو لیڈرس کا کام ہے، یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے، یہ تو پریزیڈنٹ کا کام ہے. ناؤ ٹیک دس آیا انڈیویجولی فرام ٹو پرسپیکٹو اینڈ ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹو. اس آیت کو کہ کچھ مانو اور کچھ مناؤ، یہ شیطان کی ٹرک ہوتی ہے. اس کانسیپٹ کو انڈیویجولی قرآن پڑھنے والے بھی بہت کم سمجھتے ہیں. ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مانو کچھ مناؤ، ہم اس کو فوراً اپلائی کرتے ہیں دوسرے لوگوں پر، ہم دوسرے لوگوں کے لیے اس کو سننے اور سمجھنے لگ جاتے ہیں. کیسے؟ ہم جب سنتے ہیں کہ دین کہتا ہے کہ یہ کانسیپٹ نہیں آ سکتا کچھ مانو کچھ مناؤ، اور ہم یہ سن لیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اب میں اپنی پرسنالٹی کو تو رکھتی ہوں ایک گلاس باکس میں، اور اب یہ سننے کے بعد قرآن کی کلاسز سن کر آئے اور اب ہم کہتے ہیں اب میں گھر میں کسی کو وہ نہیں کرنے دوں گی جو کہ اسلام کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اپروچ تو بڑی اچھی ہے، مگر میتھڈالوجی ہماری 99.999% غلط ہوتی ہے. کچھ مانو اور کچھ مناؤ میں جب ہم اس آواز کے ساتھ گھروں میں جو ہے وہ نعرہ لگا دیتے ہیں، اور جب ہم یہ آواز دوسروں پر اپلائی کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کسی کی مانو نہیں، اپنی بات کو منواؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، ہم خود کے ساتھ اصلاح کے پہلو سے تو اس بات کو سنتے ہی نہیں. کیا ادخلوا فی السلم کافہ اپنے نفس پر بھی اپلائی کرنا ہے، اپنے 5 فٹ کے جسم پر بھی اپلائی کرنا ہے؟ یہ اصول ادخلوا فی السلم کافہ والا انڈیویجول تو اڈاپٹ کرے جو خود قرآن کے سائے میں سے ابھی نکل کر آیا ہے، جو ابھی کورس کر رہا ہے، جو ابھی کورس کر کے آیا ہے. خود قرآن پڑھتے ہوئے بھی، یہ میرے لیے میں سنوں اور آپ سب اپنے لیے سنیں، کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن پر عمل وہاں وہاں کرتے ہیں جہاں میرے لائف سٹائل سے، میرے بینک بیلنس سے، میرے سٹریٹا سے، میری چوائسز سے، میری ہیبٹ سے جتنا قرآن نہ ٹکرائے. من پسند اعمال ہم دین کے نام پر کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جس سے جو بوجھ بنتی ہیں نفس کے اوپر، جس سے وزن آتا ہے طبیعت کے اوپر، جس سے دنیا جاتی ہے، جس سے پیسہ جاتا ہے، ان دین کے معاملوں کو ہم کہتے ہیں اوہو اچھا ٹھیک ہے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. وہاں ادخل اس فی السلم کافہ میں ہم نہیں آ پاتے، وہاں ہم دین کو پورے کا پورا اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے. تو ہم نفس کو تابع کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ رب کو تابع کر رہے ہوں. اور ہوتا کیا ہے، ادخل فی السلم کافہ سب سے پہلے خود اپنے اوپر اپلائی کرنا بھول جاتے ہیں. سو ناؤ فرام ٹوڈے Each one of us will try to implement this udkhulu fi silmi kafa, کہ ہم اپنے آپ کو compromise سے دور کریں گے اللہ کی اطاعت میں اور completely اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، ورنہ ہم شیطان کے footsteps کو follow کریں گے. یہ جو دین کہتا ہے کہ پورا نفس رب کے تابع کر دو، یہ تو خود قرآن پڑھنے والے بھول جاتے ہیں. درس دینے کا شوق سب میں، کورس کرنے کا جذبہ بھی بہت سے لوگوں میں، اور گھر سے نکل کر دین کی خدمت کرنے کا احساس بھی سب میں ہے. بٹ ناؤ لسن وٹ آئی ایم سینگ، واٹس ایپ کی ڈی پی ہوتی ہے، کہنے کو بالکل ہی بیکار سی چیز ہے، بٹ آئی ہیو ٹو مینشن، व्हाट्सएप दर्स भी दे रहे हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं, खूब शौक से जो है वो लेक्चर्स को सुनने भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं, बहुत जाकर जो है वो प्रेजेंटेशन लेते भी हैं और करते भी हैं, पर जो व्हाट्सएप की डीपी है वो अपने बगैर या तो सोचे समझे लगाई हुई है, मुसलमान औरत का हुलिया नजर नहीं आ रहा उसके अंदर, या अपनी पसंद के किसी ड्रामे के एक्टर की लगा ली, या फेसबुक के ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स अपलोड होती रहती हैं बगैर इस चीज का एहसास किए हुए कि वो शरिया के दायरे के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं, या अपने खानदान भर को, साथ साथ कुरान भी चल रहा है, उदखुलू फिस सिल्मी काफा इंडिविजुअली नहीं है, बट गुस्सा आता है मुझे खानदान पर अपने जब वो अमल नहीं करते, साथ साथ कुरान भी चल रहा है और साथ साथ अपने फ्रेंड्स, पूरे फेसबुक फ्रेंड्स को और पूरे खानदानों को, पूरे जितने भी खानदान के लोग हैं सबको बर्थडे विशेज हो रही हैं, बर्थडे विशेज करना फर्ज हो गया फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पर अपने तमाम वेकेशंस के प्लान्स को कम्प्लीटली ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, मैं किस लोकेशन पर हूँ, मैं किस रेस्टोरेंट में हूँ, मैं किस होटल में हूँ, मैं किस कंट्री में हूँ, इतना ज्यादा ये सब हो रहा है कि जैसे शरीयत ने इसको जरूरी करार दिया है। अब कहाँ है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अब कहाँ है डिसेंसी, अब कहाँ है सहाबा वाले आमाल अपने लिए पसंद करना, शो ऑफ ना करना, रिया ना करना, खुद को नजर से बचाना, नेमतों को बूस्ट ना करना, अब कहाँ है ये सब कुछ। औरों को सबक देना याद रखें बहुत आसान होता है, दूसरों को पढ़ाने के लिए इस वक्त सब तैयार है, और खुद को पढ़ाना सब भूले में। इल्म हासिल करने का मकसद अगर निगाह में नहीं रखा तो याद रखें हमें दुनिया याद रहेगी, हम अपने आप को भूल जाएंगे। सो नंबर वन फैक्टर, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप एक लीडर के तौर पर खड़े हुए थे, मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पर अपने आप को देखना है, मुझे अपने पूरे नफ्स को अल्लाह की इताअत में लेकर आना है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा की तस्वीर बनकर। सेकेंड एंगल इसी के अंदर जो उदखुलू फिस्सिल्मी काफा वाला है, दूसरों को उदखुलू फिस्सिल्मी काफा कराने की एनकरेजमेंट, जस्ट लिसन माय वर्ड, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा कराने की एनकरेजमेंट आपके जिम्मे है, बाकी काम वो खुद करेंगे। नसीहत कर सकती हैं एक दफा दो दफा, डिपेंडिंग अपॉन रिश्ता कौन है सामने आपके, जाहिर है औलाद के साथ मामला तो लाइफ टाइम है, औलाद को एक तरफ कर दें, बाकी सामने कौन सा रिश्ता है उसके मुताबिक आप उसको एनकरेज कर सकते हैं। और एनकरेज कैसे करते हैं, विद वेरी प्लेजेंट वे, विद वेरी प्लेजेंट टोन, माथे पे दस्त बल डाल के, आंखें उल्टी करके, ड्रैगन की तरह मुंह से आग निकल रही है, गंदे फेशियल एक्सप्रेशन बना लिए, इसको एनकरेजमेंट नहीं कहते, आई एम सॉरी, इसको नफरत कहते हैं, अपना पर्सनल ग्रज होता है जिसको हम दीन की ब्रैकेट में निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहने को हो सकता है आपकी नीयत अच्छी हो, बट आप अपने अंदर का ग्रज सामने वाले को दीन सिखाने के लिए निकालते हैं। और मैंने अक्सर खवातीन को सुना है, हम अपने ससुराल वालों की बिदतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब वो बिदत करते हैं ना तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, कुरान ने ये नहीं कहा हमें कि जो बिदत करे उस पर जाके गुस्सा करो, कुरान ने हमें कहा है जब लोग उदखुलू फिस्सिल्मी काफा की कैटेगरी में नहीं है तो उनको एनकरेज करो कि वो पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाएं, एनकरेज करना है, और एनकरेज करने में गुस्से के साथ नहीं एनकरेजमेंट दिलाई जाती। एक बात सुन लें, आपके गुस्सा करने से कभी कोई बिदत नहीं छोड़ेगा, और आपके आंखों के ऊपर आंखें रोल करने से और माथे पर बल डालने से भी कभी कोई गुनाह नहीं छोड़ेगा। आखिर आपको और मुझे भी तो किसी ने मोहब्बत से बताया था ना, हम बचपन से तो ऐसे नहीं थे, आई एम श्योर मेजोरिटी मेरे जैसे हैं जिनको कहीं ना कहीं से अल्लाह का कलाम सुनने को मिल गया, जिनको किसी ना किसी के थ्रू अल्लाह की बात समझने का मौका मिल गया, आखिर हमें भी तो किसी ने मोहब्बत से बताया है ना, तो बात हमारे दिल में उतरी है। मगर नहीं, हम क्या करें, हमारे अंदर दीन की अहमियत बड़ी है, बताने का जज्बा इतना है, घर से बाहर निकलते हैं तो शायद मोहब्बत से बताते हैं, बस घर में आते हैं तो पता नहीं कौन सा ड्रैगन बन जाते हैं, या तो वक्त ही नहीं होता, और जब वक्त होता है तो कम वक्त में बहुत नसीहतें करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड शक्लें बनाते हैं, चाहे सामने बच्चे हैं, चाहे सामने बहन भाई हैं, चाहे सामने अम्मी अब्बा हैं, चाहे सामने ससुराल है, बाहर जो इतना दर्द देकर आ गए, बाहर जो इतना मुस्कुरा कर आ गए, अब घर आके मुस्कुराया ही नहीं जा रहा, फेशियल मसल टायर्ड है कम्प्लीटली, हंसी नहीं आ रही अब तो मुझे। मुस्कुराहट ही नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन सब बहनों से जो कुरान से जुड़ी हुई हैं, प्लीज कुरान की आयतें अपने ऊपर अप्लाई करें। फाइना तज़हबून, हमसे भी कुरान कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन अडॉप्ट की हुई है, कौन सा इस्लाम अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है, उदखुलू फिस सिल्मि काफ़ा, इंडिविजुअली कहाँ है। शैतान दीन वालों को भी तो बहकाता है। याद रखें अपनी नियत को हर दिन खालिस करें। मेरा अल्लाह का कलाम सीखने का पहला मकसद अपनी इस्लाह करना है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है, अपने घर वालों के लिए अल्लाह से मोहब्बत करने की एनकरेजमेंट फराहम करना है। बाकी जहां तक दावत का काम है, दाई बनने वाला, आप घर में अपने हर एक दाई है। जहां तक बाहर दावत का काम करने की बात है, प्लीज ये काम शौक से नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। जाकर पढ़ लीजिए स्कॉलर्स की बायोग्राफीज। किसी ने इस इरादे से पढ़ाइयां शुरू नहीं की कि मुझे दाई बनना है। ये दावत का काम शौक से नहीं होता, बिलीव मी, ये अल्लाह की सिलेक्शन होती है। और जब अल्लाह की सिलेक्शन पर इंसान ये काम करता है ना, तो इंसान अपनी जिंदगी में बैलेंस रखने की भी कोशिश करता है, वरना शैतान के हाथों ये सब दाई उचक लिए जाते हैं। घर के बाहर मुस्कुराहटें होंगी, घर के अंदर सिर्फ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा होगा। तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारे नफ्स की मुकम्मल इताअत पर कॉम्प्रोमाइज कराए और हमारे अपनों के फॉल्ट इतने बड़े बड़े बनाकर दिखाएगा। सो बी वेरी वॉचफुल, वेरी वॉचफुल। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे ग्रेजुअली सही, मगर मुझे उदखुलू फिसल में काफा की कैटेगरी में ले आए। जाहिर है हम ओवरनाइट वलीउल्लाह नहीं बन सकते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो अल्लाह से मदद मांगते हुए हम थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह उस पर आएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि शैतान हमें दीन पर कॉम्प्रोमाइज करवाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अक्सर लोग कहते हैं क्या हो गया अगर मैं मिक्स गैदरिंग्स के अंदर बैकलेस और स्लीवलेस पहनकर चली जाती हूँ, 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ लेती हूँ। अगर हम ऐसी बातें करते हैं, अगर कोई और कर रहा है तो उसके लिए दुआ कीजिए, और अगर हम खुद करते हैं तो अल्लाह हमें फौरन से पहले हिदायत दे दे। क्या हो गया अगर मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, आखिर मुसलमान तो हूं ना, अल्लाह को मानती हूँ, पता है मुझे अल्लाह बहुत रहमान है, अल्लाह बहुत रहीम है। क्या हो गया अगर मैंने किसी पार्टी में अल्कोहल पी ली, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी अल्कोहल पी ली, सदका भी बहुत करती हूँ रमजान के महीने में और फिर पूरा साल भी बहुत सदका करती हूँ। याद रखें शैतान इंसानों के आमाल को, नेकियों को जाया करने की पोजिशन में हर वक्त तैयार होता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कराता है और इंसान मान जाता है, और जब इंसान एक दफा मानता है, करीन को ताकत मिल जाती है, अगली मरतबा वो मजीद कॉम्प्रोमाइज कराता है, फिर और, फिर और, फिर और। आपने डैम की मिसाल सुनी होगी, जो वाटर डैम्स होते हैं, जब डैम को आपने डिस्ट्रॉय करना है तो डैम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कोई बहुत मेहनत और बहुत जो है वो उसमें डायनामाइट्स और बहुत क्रेन्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डैम को डिस्ट्रॉय करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप किसी एक जगह उसके कोई क्रैक छोटा सा डाल दें। सारा डैम आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, बस वो एक छोटा सा क्रैक बना दें। विद पैसेज ऑफ टाइम वो प्रेशर से पानी के बड़ा होता जाएगा, यहां तक कि पूरा डैम तबाह हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी शैतान इस्तेमाल करता है, करीन इस्तेमाल करता है। एक चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने का कहता है कोई बात नहीं, आखिर पूरी रात तुमने इबादत भी की है, सुबह उठकर अगर तुमने सास को सलाम नहीं किया, थोड़ा सा आंखें उल्टी करके बात कर ली तो क्या हो गया, इट्स ओके। क्या हो गया अगर तुमने कल रोजा रखा हुआ था, आज पूरा दिन तुमने नेटफ्लिक्स पर गुजार दिया, इट्स ओके। शैतान ग्रेजुअली कॉम्प्रोमाइजेस कराता है, शैतान ग्रेजुअली आपको और मुझे अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाता है। और यही चीज आप देखें शैतान ने कैसे कुरैश को व्हीकल बनाया था, इसी तरह से कुरैश ग्रेजुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ प्रपोजल्स रख रहे थे। अल्लाह ने सूरतुल काफिरून नाजिल की और अल्लाह ने बता दिया, और सूरह काफिरून से पहले सूरतुल कौसर ऑलरेडी नाजिल हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने अपने रसूल को ऑलरेडी बता दिया था सूरह कौसर में कि अल्लाह आपको इतने इनाम दे चुका है, इतने इनाम दे चुका है कि अब आपको इनके कॉम्प्रोमाइजेस की जरूरत नहीं है। अल कौसर की शक्ल में आपको बेहतरीन इनाम, बेहतरीन पावर दे दी गई थी। تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو ان کے کسی انسینٹیو کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو ان کے کسی پروپوزل میں تھریٹن ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بیکاز اگر ہم اپنی اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں تو ابھی ہم نے سورۃ النصر کمپلیٹ کی ہے.